नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं और इसके साथ साथ मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आज हम फिर से एक बार एस्तेर की पुस्तक से अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, और विशेष करके इन दिनों में आप एस्तेर की पुस्तक से हमें नई नई बातों को सिखा रहे हैं। हम इस बात को सीख रहे हैं कि आप अपने लोगों से प्यार करते हैं और अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य करते हैं। हाँ प्रभु, आप यहूदियों को बचाने के लिए एस्तेर को इस्तेमाल किए। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम फिर से नई बातों को सीख सकें, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, उन्हें भी अपनी शांति प्रदान कीजिए। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एस्तेर की पुस्तक बहुत ही रुचिकर पुस्तक बनती जा रही है। राजा को नींद नहीं आ रही थी, अतः उसने सोचा कि वह इतिहास पढ़वाएगा तो उसे नींद आ जाएगी। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि उसके सेवक ने वह घटना पढ़कर सुनाई, जिसमें मोर्दकै ने एक बार राजा की जान बचाई थी। राजा के पूछने पर पता चला कि मोर्दकै को इसके लिए कोई भी प्रतिफल या इनाम नहीं दिया गया। उसी समय हमान ने प्रवेश किया तो राजा ने उससे पूछा कि राजा किसी को सम्मानित करना चाहे तो क्या करे। हामान ने सोचा कि उसे छोड़कर दूसरा कौन ऐसा मनुष्य हो सकता है जिसको राजा सम्मानित करेगा। अब इस बात को हम आगे देखेंगे। एस्तेर की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 से 9 पद में लिखा हुआ है, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मेरे प्रियो, हमान के उत्तर से उसका चरित्र प्रकट होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके मन का भेद समझ रहे हैं। उसे सिंहासन की लालसा थी, उसके मन में यह मंत्रणा थी कि समय आने पर वह राजा को घात कर दे। यह तो फारस के राजाओं की कहानी थी ही। सिंहासन पर लंबे समय बैठना बहुत ही कठिन था। पहला और दूसरा इतिहास की पुस्तकों में भी यही त्रासदी वरन हास्यास्पद परिस्थिति रही है। कुछ राजाओं का राज्यकाल बहुत ही कम समय तक रहा था, कुछ तो केवल 2 महीने ही राज्य कर पाए थे। सिंहासन पर बैठने के बाद राजा को किसी पर भरोसा नहीं होता था कि वह उसका मित्र है। जी हाँ, वह नहीं समझ पाता था कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु। वह सोचता है कि प्रत्येक मनुष्य जिसे उसने ऊपर उठाया वह उसकी जान का दुश्मन है, क्योंकि वह राजा बनना चाहता है। और हमान भी यही बात थी। हमान ने सोचा, मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। अतः उसने कहा, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। वह क्या कर रहा था? हमान लोगों को उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब राज मुकुट और राजा के वस्त्र उसके हो जाएंगे। मेरे विचार में राजा को उससे यही अपेक्षा थी, क्योंकि वह समझ गया था कि हमान स्वयं के बारे में सोच रहा था, मोर्दकै के बारे में नहीं। एस्तेर 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, राजा ने हमान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। इससे अधिक क्रोध, लज्जा और घृणा की बात हमान के लिए और क्या हो सकती थी कि मोर्दकै को राजसी वस्त्र पहनाए, राजा के घोड़े पर सवारी करवाए और सड़कों पर घुमाता हुआ घोषणा करे कि राजा जिसे प्रतिष्ठित करना चाहता है या प्रसन्न हो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मोर्दकै को ऐसा सम्मान प्रदान करना हमान के लिए ऐसा कष्ट था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तब हम देखते हैं एस्तेर 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तब हमान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मोर्दकै को सड़कों पर सम्मान सहित फिराने की अपेक्षा उसने तो उसे फांसी देने की योजना बनाई थी। हमान का ऐसा अपमान अवर्णित है। आप उसकी भावनाओं की कल्पना कर सकते हैं कि जो मनुष्य उसको दंडवत न करता हो उसे वह राजा के घोड़े पर बैठाकर शहर में घुमा रहा है। उसने तो उसके लिए घर में 75 फुट ऊंचा फांसी का फंदा बनवाया था। तब हम आगे देखते हैं एस्तेर 6 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा हुआ है, तब मोर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हमान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। हमान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हमान को एस्तेर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। ध्यान दीजिए, अंततः यातना का अंत हुआ। मोर्दकै राजा के द्वार पर आ गया, परंतु हमान घर जाकर विलाप करने लगा और सिर ढांक लिया। लज्जा की चरम सीमा थी। उसने अपनी पत्नी और मित्रों को पूरी घटना सुनाई। जेरेश एक अच्छी स्त्री थी, नहीं क्या? उसी ने फांसी का फंदा बनवाने का भी सुझाव दिया था और अब वह कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरे पतन का समय अब आ गया है। आपकी पत्नी और मित्रों से सुनना कि कल आपका अंतिम दिन है शांति नहीं देता है। जी हाँ, घटनाओं के घटने में अब समय नहीं लग रहा है। अभी हमान घर में अपनी पत्नी और बुद्धिमान मित्रों को घटना सुना ही रहा था कि द्वार पर दस्तखत हुई। राजा के सेवक उसे लेने के लिए आ गए क्योंकि भोज तैयार था और उसने निमंत्रण स्वीकार किया था। वह इस भोज की प्रतीक्षा में था और आपको स्मरण होगा कि वह बड़े घमंड से अपने मित्रों में चर्चा कर रहा था कि केवल उसी को रानी ने राजा के साथ भोज पर बुलाया है। वह भोज के लिए विलंब कर रहा था जबकि वह उसकी बाट जोह रहा था। अब घटनाओं का क्रम इस गति से चल रहा था कि हामान समय के साथ नहीं चल पा रहा था। सब कुछ उसके दुर्भाग्य के निमित्त हो रहा है। वह परिस्थितियों को रोक नहीं सकता था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और वह हामान की योजना को सफल नहीं होने देगा। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 6 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 7 में देखेंगे भोज का अतिथि फांसी के फंदे में। एस्तेर की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा, तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। हामान भोज पर गया तो उनकी भावनाएं मिश्रित थी। रानी के निमंत्रण से वह अति प्रसन्न था परंतु मोर्दकै के सम्मान से वह बहुत ही दुखी था। मेरे विचार में वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे छोड़ मोर्दकै को सम्मानित क्यों किया गया। एस्तेर ने अब राजा को मन की बात बताने के लिए अब तक साहस जुटा लिया था। पहले तो उसमें साहस नहीं था परंतु अब वह तैयार थी। निसंदेह वह घबराई हुई थी। राजा एक बार फिर रानी को आश्वासन देता है, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा, तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। यह तीसरी बार थी कि राजा ने रानी से पूछा कि उसके मन में क्या है। हम एस्तेर 7 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। एस्तेर की बात सुनकर राजा हामान दोनों ही अवाक रह गए क्योंकि दोनों ही उसकी जाति नहीं जानते थे। यह एक भयानक बात थी। उसका निवेदन था कि उसकी और उसकी जाति की जान बचाई जाए। सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश के समय वरन रानी बन जाने के बाद भी मोर्दकै ने एस्तेर को सचेत किया था कि वह अपनी जाति प्रकट न करे, अतः वह इस सत्य को छिपाए हुए थी। आपको स्मरण होगा कि हामान ने संपूर्ण यहूदी जाति के संहार की आज्ञा राजा से निकलवाई थी। वह नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है, परंतु एस्तेर ने अब अपनी पहचान प्रकट की। उसने स्वयं को यहूदी तो नहीं परंतु उस नाश होने वाले समुदाय का सदस्य कहा। उसके द्वारा ऐसा कहने का अर्थ है कि उसके धर्म और परमेश्वर की गवाही देना, क्योंकि उसका धर्म और उसका परमेश्वर एक ही थे। उसने राजा से कहा, यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, परंतु समस्या यह नहीं है, हमें एक निश्चित दिन घात किया जाएगा। वह राजा पर प्रकट करना चाहती थी कि यहूदियों के साथ विश्वासघात किया गया है और जाति रूप में उनका सर्वनाश किया जाएगा। राजा पूर्ण रूपेण आश्चर्यचकित हो गया था। रानी को नाश करने का साहस किसमें है? कौन उसके लोगों को नष्ट करना चाहता है? उसने जो कहा वह राजा की कल्पना से परे आश्चर्य की बात थी। रानी और उसका समुदाय नाश किया जाएगा। एस्तेर 7 उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब राजा शेयर्स ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? राजा आश्चर्यचकित था, वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि उसके राज्य में ऐसा हो रहा था। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन है जो मारे जाएंगे। सच तो यह है कि राजा के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। यदि आप शेयर्स का यूनान विजय अभियान इतिहास में पढ़ें, तो आपको ज्ञात होगा कि उसने मनुष्यों को ऐसे गंवाया जैसे उनकी जान की कोई भी कीमत नहीं थी। उसने लाखों जानें गंवाई, परंतु लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। उस युग में मनुष्य की जान का मूल्य बहुत कम था, परंतु इस समय उसकी चिंता का कारण था कि वे लोग एस्तेर के समुदाय के लोग थे। उसकी रानी को जान का खतरा था, अतः राजा ने पूछा कि वह कौन है, कहाँ है, कौन ऐसी कल्पना करने का साहस कर सकता है। मेरे विचार में हामान को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह नहीं जानता था कि यहूदियों के विनाश की आज्ञा का प्रभाव रानी पर भी पड़ेगा। वह नहीं जानता था कि रानी यहूदी है। यहाँ वह भोज के आसन पर राजा के पूर्व भरोसे पर अपने तख्त पर बैठा था। शेयर्स ने पूछा कि यह षड्यंत्र किसने रचा है। एस्तेर ने अब साहस दिखाया। वह राजा के प्रश्न का उत्तर देकर अपना जीवन संकट में डाल रही थी। एस्तेर की पुस्तक 7:6 पद में लिखा है, एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। हामान के पास कोई प्रतिवाद नहीं था। यह जानकर कि रानी भी यहूदी है, वह अवाक रह गया। परमेश्वर पार्श्व में क्रियाशील था। परमेश्वर अपनों की चौकसी कर रहा था। इसराइल के विरुद्ध कोई भी हथियार कारगर सिद्ध नहीं होगा। परमेश्वर यहूदियों को आशीर्वाद देने वालों को आशीष देगा और कोसने वालों को श्राप देगा। परमेश्वर का विधान इसराइल के वंशजों को सुरक्षित रखेगा। जी हाँ, राजा परिस्थिति में परिवर्तन से ऐसा विस्मित हुआ कि वह भोज से उठकर बगीचे में टहलने लगा। अंततः उस आज्ञा का प्रभाव तो उस पर भी पड़ रहा था, अतः वह इस विषय में विचार करना चाहता था। एस्तेर 7 उसके 7 पद में लिखा है, राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तेर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, राजा को सोचने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि हामान ऐसा काम करेगा। परंतु हामान को दोष देकर रानी जीवन दान की भीख मांग रही थी। राजा ने अपनी रानी पर विश्वास किया। राजा को चित्त शांत करने की आवश्यकता थी कि वह एस्तेर के दुख और विश्वास पात्र हामान, परामर्शदाता एवं प्रधानमंत्री के बारे में स्पष्ट सोच पाए। जब राजा उठकर बगीचे में चला गया, तब हामान ने रानी के समक्ष गिड़गिड़ाना आरंभ किया। हामान, जो दूसरों की जान का ऐसा प्यासा था, अब एक दास की नाई रानी के पांव पर गिरकर या पकड़कर अपने जान की भीख मांग रहा था। वह जानता था कि राजा इसे सहन नहीं करेगा और उसकी बुराई निश्चित है। अब उसकी एकमात्र आशा रानी ही थी, अतः वह भयातुर घुटनों पर गिरकर रानी से जीवन दान मांग रहा था। आगे हम पढ़ते हैं एस्तेर की पुस्तक 7:8 पद में लिखा हुआ है, जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर में ही मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। ध्यान दीजिए, हामान जान की भीख तो मांग ही रहा था, परंतु वह जानता था कि उससे लाभ नहीं होगा। उसका दंड निश्चित था, अतः अपने पागलपन में वह रानी के तख्त पर झुकने लगा। आपको स्मरण होगा कि उस युग में खाना खाते समय तख्त पर आधा लेटा जाता था। उसी समय राजा भीतर आया और हामान को देखा। क्रोध से वह भर गया कि वह उसी के सामने रानी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। हामान डर के कारण रानी की चौकी को पकड़े हुए था। वह डर के मारे आपा खो चुका था। राजा ने कहा, यह मनुष्य मेरी ही रानी पर हाथ डाल रहा है। यहां पर ध्यान दें कि राजा ने कोई आज्ञा नहीं दी। सेवकों ने राजा की बात सुनी और समझ गए कि वह क्या करना है। देखिए, राजा के कहने तक वे सब चुप खड़े थे, केवल देख रहे थे कि क्या हो रहा है। रानी बहुत ही डरी हुई थी, अतः वह सहायता के लिए पुकार भी नहीं पाई। राजा की वाणी सुनते ही उन बलिष्ठ व्यक्तियों ने हामान को उठाया और बंदी बना लिया। राजा ने देर नहीं की, वह सर्वोच्च न्यायालय था। हामान उसी रात फांसी पर लटकाया गया, वही फंदा जो उसने मोर्दकै के लिए बनाया था। यह परमेश्वर के वचन में उपस्थित एक महान सत्य का प्रकाशन है। पौलुस ने गलातिया प्रदेश के विश्वासियों को इसी तथ्य से अभिज्ञ करवाया था। 6:7 में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या यह एक ध्यान देने वाली बात नहीं कि हामान ने एक निर्दोष के लिए जो फांसी का फंदा बनवाया था उसी पर उसे स्वयं को लटका दिया गया। याकूब का अनुभव भी ऐसा ही था। उसने अपने पिता से छल किया था। वह चतुर युवक था। उसने एसाव के वस्त्र धारण किए और इसहाक ने उनकी गंध पाकर सोचा कि वह एसाव है। उस युग में इत्र नहीं होते थे, परंतु एसाव की गंध ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण थी। याकूब ने हाथों पर बकरी की खाल बांध ली थी, जिससे कि स्पर्श करने पर अंधे इसहाक को एसाव की अनुभूति हो। याकूब स्वयं को चतुर समझता था और वह परमेश्वर का चुना हुआ भी था, परंतु परमेश्वर ने उसे इस कुकर्म से बचकर जाने नहीं दिया। एक दिन जब वह आयु में अधिक हो गया था और उसके 12 पुत्र उत्पन्न हो गए थे, तब उसके पुत्र उसके पास बकरी के लहू से रंजित एक रंगीन बागा या वस्त्र लेकर आए और पूछा, क्या यह तेरे पुत्र का वस्त्र है? बूढ़ा याकूब रोने लगा। उसके प्रिय पुत्र के संबंध में उसके साथ भी छल किया गया था। मेरे प्रियो, पौलुस इस नियम को अपने जीवन के अनुभव में भी भली भांति देख चुका था। उसी ने स्तेफनुस के पत्रवाह की आज्ञा भी दी थी। उसके वस्त्र पौलुस के पास ही रखे गए थे, क्योंकि वही उनका प्रधान था, परंतु वह बच नहीं पाया। आप कहेंगे, उसने प्रभु को ग्रहण करके अपना जीवन बदल दिया था, उसके पाप क्षमा हो गए थे। जी हाँ, उसके पाप क्षमा हो गए थे, परंतु मुर्गियां सोने के लिए घर पर ही आती हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पौलुस की फसल तैयार हो गई थी। अपने प्रथम प्रचार यात्रा में पौलुस गलातिया के लुस्त्रा नगर में गया। वहां उसे पत्थरवाह किया गया और मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। पौलुस ने इस तथ्य का अनुभव किया था। जी हाँ, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। हामान यही सीख रहा था, परंतु अत्यधिक कठोरता से। वह पुरुष भोज में जाता है और पाता है कि वह फांसी का फंदा था। उसे फांसी दी गई। भजन संहिता 37 उसके 35 और 36 में लिखा है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। देखिए, भजनकार कैसी रोचक बात करता है। हे दुष्ट मनुष्य, तू आज आनंद ले ले, तू चाहे तो और भी दुष्ट बन जा। तू अपने लिए परमेश्वर की योजना एवं उद्देश्य का विरोध कर सकता है, परंतु परमेश्वर को हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मन से हट जाएगा। और हामान के साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे मित्रों, आप और मैं परमेश्वर के समक्ष दोषी खड़े हैं। हम हामान के ही दंड के योग्य हैं। आप कहेंगे, मैंने तो ऐसा कुछ भी अपराध नहीं किया है। कौन कहता है कि आपने ऐसा नहीं किया है? परंतु आप में भी उसका हिस्सा मानव स्वभाव है जो परमेश्वर का विरोधी स्वभाव है और विद्रोह करता है। इस स्वभाव के कारण आप अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, तब मसीह आपके लिए मर गया, क्रूस पर आपका स्थान ले लिया। मेरे मित्रों, यदि आप उसमें विश्वास करेंगे तो वह आपका उद्धारकर्ता ठहरेगा, क्योंकि वह चाहता है कि आप बचाए जाएं, वह चाहता है कि आप उद्धार को प्राप्त करें। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सब बचाए जाएं। वचन में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम में से प्रत्येक जो इस संसार में पाए जाते हैं, हम सब पापी हैं, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। और यहाँ पर वचन के अनुसार कि जो कोई भी पाप करता है उसकी मजदूरी उसे मृत्यु मिलनी चाहिए। लेकिन आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर में ले लिया, और मेरे बदले में जो मृत्यु मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मृत्यु आपको मिलनी चाहिए थी, उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए ताकि आप बच जाएं। जी हाँ, किसी ने आपके बदले में कीमत चुकाई है। अब वह चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और उस उद्धार को प्राप्त करें जो आपको वह देना चाहता है। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में हमान की तरह मरना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दुख उठा।